मैं आप सबको मसीह यसु के नाम में खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके सामने आज का पैगाम यशुआ की किताब उसके 22वें बाब उसकी पहली से 34वीं आयत में से लेकर आया हूँ। तो मेरे साथ आप अपनी बाइबल्स में ये हवाला देखें। इससे पहले कि हम मिलकर ये हवाला पढ़ें, आइए अपने दिलों और सरों को खुदा के आगे झुकाएं और आज की इस शाम के लिए उसका शुक्र करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे कलाम में पाक के ज़रिए हम कलाम होता है। अब जब हम तेरे कलाम से सीखना चाहते हैं तो हमारे दिलों की आंखों को खोल ताकि हम तेरे बताए हुए वादे के मुताबिक रूहुल कुद्दस की मदद से सीख सकें। मैं दुआ करता हूँ कि तू हमारे दिलों को रूहुल कुद्दस से जोड़ ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें और तेरी आवाज़ सुन सकें। प्यारे खुदावंद, हमारे दिलों को मजबूत कर और हमें सिखा। ये सब कुछ हम मांगते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहैसियत मसीही हम ये जानते हैं कि खुदा की अपने लोगों के साथ मुखलसी और वादों के जवाब में हमें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी दुनियावी चीज़ों में मसरूफ हो जाते हैं कि हम खुदावंद की परस्तिश उस तरह से नहीं करते जिसके वो लायक है। यहाँ मगरब में हम तकसीरी मुआशरा में रहते हैं जहाँ कई झूठे खुदा, झूठे देवता और झूठे मजाहिब का सामना करना पड़ता है जो कि हमारी वफादारी और मुखलसी उसके मुताबिक नहीं जो कि हमें खुदा को दिखानी चाहिए। हमें से बहुत से लोग ऐसे मुआशरे में पले बड़े होंगे जो इस बात का दर्श देता है कि ये ज्यादा अहम नहीं कि हमारे पास कि ये ज्यादा अहम है कि हमारे पास एक अजीमुलशान घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, एक उमदा नौकरी होनी चाहिए। इसके बरक्स हम अपनी जिंदगी खुदा और उसके कामों में सर्फ करें, या अपना वक्त खुदा की इबादत में गुजारें। हमारी चर्च फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक ऐसे मुआशरे में पले बड़े हैं जहां उन्हें आमरियत का सामना करना पड़ा और उनकी जिंदगी को खतरा था क्योंकि उन्हें इस बात से मना किया गया कि वो अपने अकीदा का बरमला इजहार नहीं कर सकते। हमें से कुछ लोग ऐसी फैमिलीज में पले बड़े होंगे जहां मसीही होने की वजह से उनके अकीदे की वजह से उनका मजाक का सामना करना पड़ा। हमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का प्रेशर होगा या नेटफ्लिक्स पर शुरू होने वाली एक नई सीरीज का प्रेशर होगा। हम सबको ऐसी कई तवज्जो हटाने वाली आजमाइशों का सामना करना पड़ता है जो हमें खुदा और उसके कलाम से दूर ले जाती हैं। कुछ ऐसा ही बनी इसराइल के साथ भी था। यशुआ की किताब उनके आखिरी अबवाब में बनी इसराइल के लिए एक नई अपील की गई कि वो खुदावंद की खिदमत करें। जैसा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में यशुआ की किताब पढ़ते हुए हमने ये देखा कि पहले से 5वें अबवाब में यशुआ की किताब में यह सिखाया गया है कि वो पहले वाक्यात मरकज कि वो ऐसे वाक्यात जो मरकज बनी इसराइल के दरियाए यर्दन को पार करने और खुदा के वादा की गई सरजमीन पर पहुंचने के बारे में हैं। 6 से 12वें बाब में यह हिस्सा हमें बनी इसराइल की वादा की गई सरजमीन को हासिल करने के वाक्यात के बारे में बताता है। तीसरा हिस्सा जो कि 13वें और 21वें बाब के में बताए गए वाक्यात पर मबनी है, वो हिस्सा हमें इस बनी इसराइल के कबीलों के बारे में बताता है कि वो किस तरह से इस सरजमीन पर कब्जा करते हैं। 22वें और 24वें बाब में हमें बनी इसराइल के बारे में ये बताया गया है कि किस तरह से वो सब इकट्ठे हुए कि सब यकदिल होकर खुदा की खिदमत करने लगे। डेल रॉल्फ डेविस अपनी कमेंट्री में इस बात का जिक्र करता है कि 21वें बाब उसकी 43वें 45वें आयात में यशुआ बनी इसराइल की खुदा के लिए मुखलसी का इजहार करता है। ये आखिरी अबवाब बनी इसराइल के लिए सीखने और अपील करने के अबवाब हैं। बनी इसराइल को खुदा की मुखलसी और फराहमी के और उसकी फराहमी की बिना पर उसी तरह मुखलिस होना चाहिए था जैसा कि खुदावन उनके साथ था। 22वें बाप में यशुआ मशरकी कबीलों को इस बात का इंतबाह देता है कि वो इस मामले में खुदा की वफादार रहें, क्योंकि बनी इसराइल को खुदा ने इसलिए चुना है कि वो उसके वफादार रहें और खुदा ने उनके साथ अपनी वफादारी भी निभाई है। ये बनी इसराइल और हमारे लिए भी एक अहम पैगाम है कि हमें उसका वफादार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा मुखलिस रहता है। आज के पैगाम में हम तीन अहम नुकात सीखेंगे। सबसे पहला नुकात वफादारी की अपील, दूसरा वफादारी की मोहतात तश्वीश, और तीसरा आइंदा नस्ल के लिए वफादारी की तश्वीश। तो आज के पैगाम में तीन अहम नकात हैं, जो कि पहला वफादारी की अपील, दूसरा वफादारी की मोहतात तश्वीश, और तीसरा आइंदा नस्ल के लिए वफादारी की तश्वीश। सो आइए आज के हम पैगाम में हम आज के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है वफादारी की अपील, जिसको हम 22वें बाब उसकी पहली और छठी आयत में देखेंगे। यशुआ की किताब उसका 22वां बाब उसकी पहली से छठी आयत तक। तो आइए मेरे साथ हम खुदा के कलाम में देखते हैं। यशुआ मशरकी कबीलों को उनके इलाकों में भेजता है। उस वक्त यशुआ ने रूबीनियों और हदियों और मनस्सी के आते कबीला को बुलाकर उनसे कहा कि सब कुछ जो खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको फरमाया था तुमने माना, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उसमें तुमने मेरी बात मानी। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावंद अपने खुदा के हुक्म की ताकीद पर अमल किया। और अब खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे भाइयों को जैसा उसने उनसे कहा था आराम बख्शा है। सो तुम अब लौट कर अपने अपने डेरे को अपनी मेरासी सरजमीन में, जो खुदावंद के बंदा मूसा ने यर्दन के उस पार तुमको दी है, चले जाओ। फक्त उस फरमान और शरा पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया, कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। और यशुआ ने बरकत देकर उनको रुखसत किया और वो अपने अपने डेरे को चले गए। इन आयात में यशुआ बनी इसराइल के कबीलों के दरमियान सरजमीन की मेरास बयान करता है। यशुआ इन कबीलों का ताकीद करता है कि वो दूसरे इसराइली कबीलों की मदद करें, ताकि वो भी अपने अपने कबीलों की मेरासी हासिल कर सकें। ये आयात हमारे हमारे पैगाम में नहायत अहम है। यह यशुआ की बनी इसराइल के लिए अपील है कि वो खुदा के मुखलिस रहें। वो उन्हें ताकीद करता है कि वो खुदा के अहकामात को याद रखें। वो खास तौर पर उनकी तवज्जा इस्तशना उसके छठे बाप उसकी चौथी से पांच छठी आयात पर मरकूज करता है, जिसमें यूं मरकूम है। आप मेरे साथ इस्तशना की किताब उसका छठा बाप उसकी चौथी से 26वीं आयत तक देखिए। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सुन ऐ इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और रह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हों, और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। बनी इसराइल से यशुआ की ये अपील थी कि वो खुदावंद के वफादार रहें, क्योंकि वो उनके साथ अहम कविनेंट में शरीक है। ये आयात इसराइल के लिए खुदा के अहकामात में से अहम तरीन थीं। इनका जिक्र हम नए अहदनामे में मती की अंजील उसके 22वें बाब उसकी 34वें 40वें आयात में भी देखते हैं, जिनका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ दोहराया। बनी इसराइल को यह तलकीन की गई कि वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदावंद हमेशा उनसे मुखलिस रहा और उसने अपने वादों की पासदारी की। खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करना चाहता है, लेकिन वो ये सब मोहब्बत, प्यार और एतमाद के रिश्ते में रहते हुए करना चाहता है। यशुआ इस्तशना उसके छठे बाप उसकी चौथी से छठी आयात में उनको जो लिखा था वो उनको याद दिलाता है कि बनी इसराइल से कि वो खुदा के वफादार रहें, क्योंकि वो उनके साथ हमेशा से इस कवेनेंट में शरीक है। यशुआ उसके 22वें बाप उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फक्त उस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। बनी इसराइल को यह अहकाम दोबारा से याद दिलाता है कि वो खुदा से मोहब्बत रखें, और वो अपनी मोहब्बत इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि वो खुदा के कलाम को याद रखें और उस पर अमल पैरा हों। दूसरे लफ्जों में बनी इसराइल को यह तलकीन की गई कि वो खुदावंद अपने खुदा से जुड़े रहें, उसी तरह जैसे कि पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब उसकी 24वीं आयत में आदम और हवा के बारे में ये कहा गया था, या रूत की किताब उसके पहले बाब उसकी 14वीं आयत में रूत और नेओमी के बारे में भी कुछ यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और यही हमारे लिए आज के पैगाम का मरकजी ख्याल है। जिस तरह पहली से 26वीं आयात में यशुआ की अपील का अहम मरकज था, बाकी आयात बनी इसराइल के रिस्पॉन्स के बारे में बताती हैं, तो हमारा आज का दूसरा पॉइंट है वो है वफादारी की मोहतात तशवीश। वफादारी की मोहतात तशवीश, और ये हम 7वीं से 20वीं आयात में देखेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम में 7वीं आयात से नामी आयात में देखें, उसमें यूं मरकूम है, मनसी के आधे कबीला को तो मूसा ने बसन में मेरास दी थी, लेकिन उसके दूसरे आधे को यशवा ने उनके भाइयों के दरमियान यर्दन के उस पार मगरिब की तरफ हिस्सा दिया, और जब यशवा ने उनको रुख्सत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तो उनको भी बरकत दे देकर उनसे कहा कि बड़ी बड़ी दौलत और बहुत से चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक लेकर तुम अपने डेरे को लौटो और अपने दुश्मनों के माले गनीमत को अपने भाइयों के साथ बांट लो। तब बनी रूबन और बनी जद और मनस्सी का आधा कबीला लौटे और वो बनी इसराइल के पास सिलह से जो मुल्क के कनान में है रवाना हुए ताकि वो अपने मिरासी मुल्क जलाद को लौट जाएं, जिसके मालिक वो खुदावन के उस हुक्म के मुताबिक हुए थे जो उसने मूसा की मार्फत दिया था। 7वीं से 9वीं आयात में यशुआ ने दो कबीलों को यर्दन के उस पार मगरिब की तरफ वापस भेज दिया है। उनके साथ दौलत और चौपाए और चांदी और सोना और पीतल और लोहा और बहुत सी पोशाक भेजता है जो कि खुदावन की मुखलसी और अपने लोगों के लिए मोहब्बत जाहिर करती है। 10वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि ये कबीले यर्दन दरियाए यर्दन के किनारे मसबा बनाते हैं जो कि उनके दूसरे कबीलों के माबैन तकरार का बायस बनता है। बाकी कबीलों का इस तरह से रिएक्ट करना क्या ये एक गलत फहमी थी या उनका ये अमल दुरुस्त था? हम 15वीं से 20वीं आयात में ये पढ़ते हैं कि उन कबीलों का ये रिएक्शन खुदावंद की मोहब्बत और मुखलसी की निशानी थी। उन्हें मशरकी कबीलों की मुखलसी पर तश्वीश थी और वो दो कबीलों के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें मुहतात तश्वीश थी। इसके साथ साथ वो खुदावंद की मोहब्बत के लिए ये करना चाहते थे। लेकिन इन दो कबीलों ने ऐसा बुरा क्या किया था? हम 16वीं और 19वीं आयात में ये सीखते हैं कि ये मसबा उन्होंने वादा की गई सरजमीन पर बनाया था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस्तशना पुराने अहदनामे की अहम किताब है। इस्तशना की किताब का अहम मकसद बनी इसराइल की रहनुमाई करना था। ये उन्हें ये सिखाती है कि वो किस तरह खुदा की वफादार बनकर जिंदगी गुजार सकते हैं। इस्तशना उसका 12वें बाप में हम अहम नुकात का जिक्र पढ़ते हैं जो बनी इसराइल को इबादत के लिए बताए गए थे। इनमें से एक अहम नुकता ये भी था कि वो पहले से मौजूद तमाम इबादतगाहों को गिरा दें और सिर्फ एक ही इबादतगाह बनाएं जो कि बाद में हैकल में तब्दील हो, जो कि खुदा की इबादत के लिए एक एक ही जगह हो। तो ऐसे में वो तमाम कबीले तश्वीश करने में दुरुस्त थे। ये मसबा खुदा की सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। ये इसराइल के बताए गए अहकामात की भी तर्दीद करता था। हम इन कबीलों से ये भी सीख सकते हैं कि हम खुदा की मोहब्बत और जील को कैसे जाहिर कर सकते हैं। हमें यह चाहिए कि हम भी हर उस बात को जो खुदा की नजर में नापसंदीदा हो, खुदा के अहकामात के मुखालिफ हो और बनी इसराइल के उन कबीलों की तरह गुनाह के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहें। उनकी तरह हमें भी वफादारी की मुहतात तश्वीश होनी चाहिए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम मगरबी कबीलों की तरह मुहतात रहें। इसी तरह अब हम आज के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आइंदा नस्ल के लिए वफादारी की तश्वीश। आइंदा नस्ल के लिए वफादारी की तश्वीश, इसके लिए हम 15वीं से 20वीं आयात में देखेंगे जिसमें खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सो वो बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आते कबीला के पास मुल्क के जलात में आए और उनसे कहा, खुदावन की सारी जुमात ये कहती है कि तुम ने इसराइल के खुदा से ये क्या सरकशी की कि आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होकर अपने लिए एक मसबा बनाया और आज के दिन तुम खुदावंद से बागी हो गए। क्या हमारे लिए फगूर की बदकारी कुछ कम थी जिससे हम आज के दिन तक पाक नहीं हुए? अगरचे खुदावंद की जुमात में वबा भी आई आई कि तुम आज के दिन खुदावंद की पैरवी से बरगश्ता होते हो, और चूंकि तुम आज खुदावंद से बागी होते हो, इसलिए कल ये होगा कि इसराइल की सारी जुमात पर उसका कहर नाजिल होगा। और अगर तुम्हारा मिरासी मुल्क नापाक है, तो तुम खुदावंद के मिरासी मुल्क में पार आ जाओ, जहां खुदावंद का मस्कन है और हमारे दरमियान मिरास। लो, लेकिन खुदावंद हमारे खुदा के मस्बा के सिवा अपने लिए कोई और मस्बा बनाकर ना तो खुदावंद से बागी हो और ना हम से बगावत करो। ये मस्बा इसलिए बनाया गया कि आइंदा नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे। दरिया यर्दन एक बड़ा दरिया, एक बहुत बड़ी सरहद थी, और इन दो कबीलों को ये खदशा था कि बाद के सालों में मगरबी इसराइल के कबीलों के लोग अपने बच्चों को दरिया यर्दन के पार करने से मना करेंगे। उनको ये खदशा था कि बाद की नस्लों के लोग खुदा की पैरवी और परस्तिश नहीं करेंगे और खुदा के वादे याद नहीं रखेंगे। इन कबीलों ने खुदा के अहकामात पामाल नहीं किए थे, बल्कि ये मस्बा उनकी और बाद की नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे। ये मस्बा इस बात की गवाही था कि बनी इसराइल के खुदा की प्रस्तिश करते हैं और वो खुदावंद के पैरोकार हैं। तो उन कबाइल ने खुदा के अहकामात को नहीं तोड़ा था, बल्कि ये मस्बा उनका आने वाली नस्लों के लिए तश्वीश की निशानी थी। तो मेरे लिए ये नहायत खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे चर्च में मौजूद हूँ जो आइंदा नस्लों की खुदा के साथ रिश्ते और प्रस्तिश के लिए मुहतात है। ये खुशी की बात है कि चर्च ऐसे चर्च से मुंसलिक हूँ जहाँ पे वालदैन बच्चों को कलाम सिखाने में दिलचस्पी लेते हैं और चर्च भी उनके साथ मिलकर उनकी रहनुमाई करता है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप ऐसा करते रहें, अपने बच्चों को आइंदा आने वाली नस्लों को खुदा का कलाम सिखाएं, ताकि उनका रिश्ता खुदा से जुड़ा रहे। आज की हम 30वीं से 34वीं आयात में ये देखते हैं कि यह रिस्पांस बनी इसराइल के लिए अच्छा था और उन सब ने मिलकर खुदावंद की सताइश की। 33वीं आयत में यूं मरकूम है, तब बनी रूबन और बनी जद ने उस मस्बाह का नाम एदिया कहकर रखा कि वो हमारे दरमियान गवाह है कि यहोवा खुदावंद है। बनी इसराइल इसी तरह खुदा की वफादारी और मुखलसी का जवाब दे सकते थे कि वो भी खुदा के वफादार रहें और उसके अहकामात पर अमल करें। हम आज के पैगाम में ये देखते हैं कि बनी इसराइल ने यशुआ की अपील का मौसर और अच्छा जवाब दिया। उन्होंने वफादारी की मुहतात तश्वीश जाहिर की और उसके साथ साथ आइंदा नस्लों के लिए वफादारी की तश्वीश भी जाहिर की। इसी तरह बनी इसराइल को चाहिए था कि वो खुदा की वफादार रहे। यशुआ की इस पूरी सीरीज में हमने ये सीखा कि यशुआ खुदावन यसु मसीह की माने की तस्वीर हैं, जो कि हमें कनान में तो नहीं लेकर जाते, लेकिन अपनी वादा की गई नई किंगडम में जरूर लेकर जाएंगे। ये खुदा का वादा है कि यसु मसीह पर ईमान लाने से खुदावंत हमें हमेशा के लिए वादा की हुई जगह पर लेकर जाएंगे। यशुआ उसका 22वां बाब बनी इसराइल के लिए उस वक्त और हमारे लिए आज के दिन इस बात की निशानदेही करता है कि हमें पूरे दिल और जान से खुदावंत की पैरवी करना चाहिए, और वो इस काबिल है कि अपने किए गए तमाम वादे पूरे करे। ये हमें याद दिलाता है कि खुदावंद जिंदा खुदा अपने वादे हमेशा पूरे करता है। बदकिस्मती से बनी इसराइल ने खुदावंद के इन वादों को याद ना रखा और बारहा उसकी नाफरमानी की, जिसकी वजह से उन्हें असीरी में जाना पड़ा। हमें भी अपनी जिंदगी में ये याद रखना चाहिए कि हम बनी इसराइल की गई गलतियों को ना दोहराएं और अपनी गलतियों और कोताहियों से माफ़ी मांगें और उन्हें दोबारा ना दोहराएं। खुदावन के वादों की रोशनी में हमें चाहिए कि हम इससे जुड़े रहें और रूहुल कुद्दस की रोशनी में खुदा के बताए गए अहकामात पर अमल करते रहें और पूरे दिल पूरी जान से उसकी खिदमत करें। आमीन।